ओम शांति। आज का विषय आप सबको बहन ने बताया, अपना परिचय, आपका स्वयं की खोज। आप सब कहेंगे कि हम तो अपने आप को जानते हैं, तो बहन जी हमारा क्या परिचय देंगे। लेकिन जो परिचय हम जानते हैं वो हमारा पूरा परिचय नहीं है, क्योंकि जब आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन, तो अपना नाम बताएंगे, अपना डेजिग्नेशन बताएंगे, लेकिन वो नाम आपको जन्म के कुछ दिन के बाद रखा गया था। जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन वो आपका नाम नहीं था। जो डेजिग्नेशन का हम परिचय देते हैं वो जब हमने वो डिग्री प्राप्त की, पढ़ाई की, उसके बाद उस पद पर हम आए तो वो हमारा परिचय बना, और जब उससे रिटायर हो जाएंगे तो एक्स आगे लग जाएगा। माना वो भी मेरा कंप्लीट परिचय नहीं है। और हम कैसे देते हैं अपना परिचय? कोई अपनी जाति से देगा, कोई अपने धर्म से परिचय देगा, लेकिन ये जो भी हम परिचय देते हैं ये हमारी इस फिजिकल बॉडी का है। और मैं केवल ये फिजिकल बॉडी नहीं हूं, क्योंकि हम देखते हैं जब इंसान का शरीर छूट जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो ये बॉडी तो अभी घर में ही होती है, डेड बॉडी। लेकिन फिर भी कहते हैं कि फलाना चला गया, तो जो चला गया वो कौन था? इसीलिए लंबे समय से हमारे विचारकों ने, साधकों ने बहुत खोज की और कहा नो दाई सेल्फ, रियलाइज दाई सेल्फ, खुद को जानो, अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूं। विवेकानंद जी जब प्रथम बार अपने गुरु के द्वार पर गए, नरेंद्र कहलाते थे बचपन में, तो जब वो अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए और उन्होंने बाहर से द्वार खटखटाया तो अंदर से आवाज आई कि कौन, तो नरेंद्र ने कहा यही मैं जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। तो वो जो हमारा रियल सेल्फ है, आज हम उसकी पहचान, उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि जब तक हम उसे नहीं जानते हैं तब तक जीवन में खुशी नहीं आ सकती है। और हर इंसान की सुबह से शाम तक जो भागदौड़ है वो किसके लिए है? चाहे आप किसी भी फील्ड में भाग रहे हों, लेकिन उस भाग दौड़ के पीछे जो लक्ष्य है वो यही है कि जीवन में खुशी मिले और शांति मिले। लेकिन उसके लिए हमें पहले खुद को जानना जरूरी है कि खुशी किसको चाहिए, शांति किसको चाहिए। तो आज हम इसी बारे में चिंतन करेंगे। और बहुत बार तो हमें ये भी पता नहीं होता कि खुशी है क्या चीज। जब किसी से पूछा जाए ना खुशी क्या है, या जब अपने आप से भी कुछ चिंतन करते हैं तो हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से सोचता है खुशी क्या है। जब मैं ये परीक्षा पास कर लूंगा तो खुश हो जाऊंगा, जब मेरी ये जॉब लग जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, है ना। जीवन भर हमारी खुशी का जो पैमाना है वो चेंज होता रहता है। वो सब चीजें हमें प्राप्त भी हो जाती हैं लेकिन फिर भी सच्ची खुशी प्राप्त नहीं होती। तो खुशी क्या है और खुशी कहाँ है? अक्सर सोचते कि बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, बहुत अच्छी कोठी बन जाए, मैरिज हो जाए, बच्चे हो जाए, वो सेटल हो जाए तो बस मैं खुश हो जाऊंगा। ये सब चीजें बहुतों के पास हैं, लेकिन फिर भी जो खुशी और शांति की खोज है वो पूरी नहीं हुई है। तो खुशी क्या है और खुशी कहाँ है, इसको हमें पहले समझना बहुत जरूरी है। खुशी मेरी मनोस्थिति में है, मन की स्थिति में। एक व्यक्ति को अगर इसी रूम में बिठा दिया जाए, डनलप के गद्दे हो, बहुत स्वादिष्ट भोजन भी हो उसके सामने, लेकिन उसके मन में कोई चिंता है, कोई तनाव है, कोई संघर्ष है, तो उस एसी रूम के अंदर भी उसको नींद नहीं आएगी। आएगी नींद? नहीं आएगी। बाहर के सारे साधन उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी उसको चैन नहीं होगा। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति जिसके मन में धीरज है, संतोष है, अगर वो रूखी रोटी खा के फरस पे भी लेट जाएगा ना, आराम से नींद आ जाएगी। तो सुख चैन खुशी कहां पर है? बाहर के साधनों में नहीं, मन की अच्छी स्थिति में है। और मेरे मन की स्थिति का जो रिमोट है वो किसी और के पास नहीं है, वो मेरे पास है। मेरे मन की स्थिति मेरे कंट्रोल में है। लेकिन वो मेरे कंट्रोल में आएगी कैसे? जब हम ये जानेंगे कि मैं हूं कौन है, मैं कौन हूं, तो उसे समझना बहुत जरूरी है। और यही कारण है कि आज के मनुष्य का जो जीवन है वो खुद को ना जानने के कारण बहुत तनावग्रस्त है। चाहे हम बड़े पद में हैं, छोटे पद पे हैं, छोटे बच्चे हैं, बच्चे का भी नेक्स्ट डे पेपर होता है ना, वो कहता है मम्मी आज मुझे बहुत टेंशन है, जबकि वो जानता नहीं है टेंशन क्या चीज होती है, लेकिन वो फील करता है। तो छोटे से लेकर के बड़े तक हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ बोझ है, तनाव है। और तनाव वास्तव में क्या चीज है उसको हमें थोड़ा सा समझना है। यहां एक इक्वेशन दिखाई है, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर्स डिवाइडेड बाय इनर पावर्स। स्ट्रेस कब होता है? हमारे जीवन में बहुत सारे दबाव हैं, प्रेशर्स हैं, हेल्थ का है, इकोनॉमिक कंडीशन का है, फैमिली का है, बच्चों का है, बहुत सारे प्रेशर्स हैं। लेकिन उन प्रेशर्स को ओवरकम करने के लिए जो आंतरिक शक्ति है, इनर पावर है, वो नहीं है। अगर हमें स्ट्रेस को जीरो करना है तो इस इक्वेशन के अनुसार या तो प्रेशर्स जीरो हो जाएं तो इक्वल टू जीरो आ जाएगा, या फिर इनर पावर बहुत ज्यादा हो हमारी, तब जो है स्ट्रेस जीरो हो सकता है। अब जो जीवन में आने वाले प्रेशर्स हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उनको कम नहीं कर सकते हैं, है? जीवन है, संसार है, कुछ ना कुछ प्रेशर्स जो है वो आते ही रहेंगे। लेकिन जो हमारे कंट्रोल में है वो है कि हम अपनी अंदर की जो आत्मिक शक्ति कहो, अंतरात्मा की शक्ति कहो, इनर पावर्स को हम बढ़ा लेंगे, तो फिर हमें वो प्रेशर्स कुछ खास दिखाई नहीं देंगे। कितने भी प्रेशर्स होंगे फिर भी जीवन बहुत स्मूथली चल सकता है। एक छोटे से उदाहरण के द्वारा हम इस बात को समझेंगे कि एक बार एक सन्यासी थे, वो कहीं दूर से यात्रा करके वापस आ रहे थे और एक उनका शिष्य भी उनके साथ था, नया नया। अब जैसे वो अपनी यात्रा पूरी करके अपनी झोपड़ी के नजदीक आ रहे थे तो देखा कि हवाएं बहुत तेज चल रही थी, बारिश का टाइम था, और उनकी झोपड़ी का जो आधा छप्पर था वो उड़ गया था। तो जैसे ही वो उस शिष्य ने देखा झोपड़ी की तरफ, तो भगवान को कोसने लगा कि हे भगवान, लोगों के बड़े बड़े महल खड़े हैं, कोठियां खड़ी हैं, उनको कुछ नहीं हुआ, हमारी एक छोटी सी झोपड़ी थी इसका भी तूने आधा छप्पर उड़ा दिया। हम तेरी इतनी साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तू हमारा कुछ भी ध्यान नहीं रखता है। मतलब बड़े आवेश में आ गया। लेकिन जो बड़ा था गुरु, उसने हाथ जोड़ के भगवान का शुक्रिया किया कि हे ईश्वर, हवाओं का क्या भरोसा था, वो पूरा छप्पर भी उड़ा सकती थी, लेकिन ये जो आधा बचा है ना, ये आपने ही बचाया है। आप हमारा कितना ध्यान रखते हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए, सिचुएशन एक ही है, परिस्थिति एक ही है, प्रेशर एक जैसे हैं, लेकिन जिसकी आंतरिक शक्ति है, साधना की शक्ति है, उसे उस परिस्थिति में भी आनंद आ रहा है। तो इसलिए जितना जितना हम मेडिटेशन करते हैं, अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाते हैं, तो परिस्थितियां तो चलती रहेंगी, लेकिन हमारे मन की स्थिति जो है वो हमारे कंट्रोल में होगी और हम सदा पॉजिटिव रहेंगे। उसके साथ साथ आज का जो ये मेडिटेशन शिविर है, जो हम शुरू करने जा रहे हैं, उसका फर्स्ट लेसन करेंगे, तो राजयोग क्या है? क्योंकि जो योग शब्द है ना, वो बहुत प्रचलित है आज की दुनिया में। कुछ लोग जो फिजिकल एक्सरसाइज है उसी को समझते हैं, भाई योगा करो, फिजिकली हेल्दी रहेंगे। और योग के नाम पर अनेक प्रकार के हठ योग भी हैं, बहुत सारी क्रियाएं हैं। लेकिन यहाँ योग से मतलब है, वैसे भी योग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जोड़, मिलन, एडिशन। तो आत्मा का मिलन ईश्वर के साथ, ये आध्यात्मिक योग है। और आध्यात्मिक अर्थ में राज योग माना ही आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ। लेकिन इसके अंदर एक है आत्मा, दूसरा है परमात्मा, और तीसरा है मिलन। तीन चीजें हैं और तीनों को समझना बहुत जरूरी है। आत्मा क्या है? जिसके साथ मन को जोड़ना है वो कौन है, और मन को जोड़ने की विधि क्या है? तो आपको यहां तीनों ही लेसन दिए जाएंगे। आज का ये फर्स्ट लेसन है खुद की पहचान, आत्मा की पहचान, स्वयं की खोज, अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को पहचानना कि मैं वास्तव में क्या हूं। तो हम उसकी शुरुआत करते हैं। इस राजयोग शिविर का बहुत महत्व है। कई बार हम ऐसा भी सोच लेते हैं कि ध्यान लगाना, योग करना, ये तो जीवन का जो अंतिम पड़ाव है उस समय करने की चीज है, शायद बुढ़ापे में करने की चीज है। लेकिन जो मेडिटेशन है वो जीवन के हर क्षेत्र में, हर आयु में करना जरूरी है। क्योंकि आज के समय में जो तनाव है, वो छोटे बच्चे को भी तो होता है ना, बच्चा है, युवक को तो और ज्यादा होता है ना, नौकरी का, कंपटीशन का, कितनी टेंशन होती है। तो जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी जो डिसीजन पावर है वो बढ़ती है, हमारी सहन शक्ति बढ़ती है, और हमारी मेमोरी शार्प होती है, हमारी जो इनर पावर्स हैं वो बढ़ती हैं। इसलिए मेडिटेशन हर आयु वर्ग में हर इंसान को करना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ खुशनुमा जिंदगी के लिए सबसे पहले ये जानना कि मैं कौन हूं, खुद की खोज, अपने आप के बारे में अच्छी तरह से जानना। तो यहां ये दिखाया कि देखो, जिस फिजिकल बॉडी का हम परिचय देते हैं वो तो हमें विज्ञान ने भी बता दिया है कि ये शरीर जो है ना, इसके अंदर कैसे ऑर्गन्स हैं, वो कैसे काम करते हैं। लेकिन इसके अंदर मैं एक चेतना हूं, एक शक्ति हूं, जिसको कोई आत्मा कहता है, कोई चेतना कहता है, कोई प्राण कहता है, कोई रूह कहता है। तो वो मैं चेतन शक्ति, जिसका रूप है पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश, पुंज है। ये जड़ शरीर और चेतन आत्मा, इन दोनों के मेल से हम जीव आत्मा या जीवित मनुष्य कहलाते हैं। तो आत्मा के बारे में ही हम अच्छी तरह से जानेंगे। सबसे पहले आत्मा का रूप कैसा है, क्योंकि आत्मा एक अजर, अमर, अविनाशी सत्ता है। उसको हम इन भौतिक आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसे रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं। और आत्मा का हमारे शरीर में, मस्तक में, जहां पर हम तिलक लगाते हैं, मंदिरों में भक्त लोग टीका लगाते हैं, यही आत्मा के इस देह में बैठने का स्थान है। और वो एक डिवाइन लाइट है, अति सूक्ष्म प्रकाश बिंदु है, पॉइंट ऑफ लाइट है, एक डिवाइन दिव्य शक्ति है आत्मा, जिसके लिए गीता में बहुत सुंदर भगवान ने पूरा दूसरे अध्याय में एक्सप्लेन किया है कि आत्मा एक ऐसी सत्ता है जिसको ना अग्नि जला सकती है, ना पानी गला सकता है, ना वायु सुखा सकती है, ना शस्त्र काट सकते हैं, जो एक अजर, अमर, अविनाशी सत्ता है जिसका कभी नाश नहीं होता। मृत्यु होना माना ये शरीर वस्त्र है, वस्त्र छूट गया लेकिन आत्मा आगे यात्री चला गया, जाकर के दूसरा वस्त्र धारण किया, और दूसरा वस्त्र धारण करने का नाम ही जन्म है, और वस्त्र बदलने का नाम ही मृत्यु है। लेकिन आत्मा का ना जन्म होता है और ना मृत्यु होती है, वो एक अजर, अमर, अविनाशी सत्ता है। और कैसे वो हमारी इस देह में प्रवेश करती है जब, और मस्तक के मध्य में उसका निवास स्थान है, स्थान को भ्रकुटी कहते हैं, जो सारा दिन दोनों आंखों से देखती है, कानों से सुनती है, मुख से बोलती है। हमारे शरीर के अंदर जो मुख्य पुर्जे हैं इस बॉडी को चलाने के, वो इसी भाग में है। आंखें हैं देखने के लिए, कान सुनने के लिए, मुख बोलने के लिए, ब्रेन सोचने के लिए। तो आत्मा इन सब के नजदीक ही बैठती है, जैसे गाड़ी में ड्राइवर फ्रंट सीट पे बैठ के उसको चलाता है, तो आत्मा भी फ्रंट सीट पर बैठ करके हमारे शरीर को चलाती है। तो हमें ये भी समझना जरूरी है कि आत्मा और शरीर दो भिन्न सत्ताएं हैं। शरीर नाशवान है, परिवर्तनशील है। छोटा बच्चा होता है, धीरे धीरे युवा होता है, वृद्ध होता है, फिर ये वस्त्र छूट जाता है, पुराना हो जाता है, नया वस्त्र धारण करती है। तो आत्मा मस्तक के मध्य में एक अविनाशी सत्ता है और ये शरीर नाशवान है। आत्मा और शरीर में क्या अंतर है कि देखो, शरीर जो है ये पांच तत्वों का पुतला है, पंच भौतिक है। शरीर के लिए क्या कहते हैं, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश, इन पांच तत्वों का पुतला है। और जैसे ही आत्मा इसमें से निकल जाती है और इसका अग्नि संस्कार कर देते हैं, तो पांचों तत्व पांचों तत्वों में मिल जाते हैं। लेकिन आत्मा किस चीज से बनी है? शरीर की रचना तो पांच तत्वों से है, लेकिन आत्मा की रचना किससे है? तो आत्मा के मूल सात गुण हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। जो पॉइंट ऑफ लाइट है आत्मा, बिंदु स्वरूप है, उसके अंदर ये सातों गुण हैं। तो सोल क्या है? एसेंस ऑफ सेवन वैल्यूज, एसेंस ऑफ सेवन वैल्यूज, सात गुणों का पुंज है वो। शरीर पांच तत्वों का पुतला, प्रकृति के पांच जो तत्व हैं, फाइव एलिमेंट्स। लेकिन आत्मा जो है वो सात गुणों का पुंज है। इसीलिए देखो, जब जब हमारा मन अशांत होता है तो हम इरिटेशन फील करते हैं। इन सातों में से किसी भी गुण की जीवन में कमी होती है तो तनाव होता है, अशांति होती है। फिजिकली अगर हम देखें तो पांच तत्वों में से किसी भी तत्व की कमी होती है, पानी की कमी हो जाए, गर्मी में दूर से चल के आए, पसीना निकल गया, प्यास लगी, उस समय हमें पानी ही चाहिए। अगर कोई कहे पहले भोजन कर लो बाद में पानी लेना, या एक गिलास दूध पी लो बाद में पानी पीना, तो हम क्या कहेंगे? पानी ही चाहिए या भोजन खाने से भी चलेगा? पहले पानी चाहिए। पानी क्यों चाहिए? क्योंकि शरीर पानी से बना हुआ है, 70% पानी है हमारी इस बॉडी के अंदर। तो किसी भी तत्व की कमी होती है ना शरीर में, तो फिर हम बीमारियां भी होती हैं और परेशानी भी होती है। इसी तरह आत्मा सात गुणों का पुंज है, तो जब जब उसकी शांति का लेवल डाउन हो जाता है, जब जब उसके प्रेम का प्रेम उसे नहीं मिलता है, देखो कुछ लोग जो है ना वो क्या कहेंगे कि चाहे रूखी रोटी दे दो पर प्रेम से बात करो, मुझे शांति का जीवन चाहिए, रूखी रोटी खा के भी गुजारूंगा। माना जीवन क्या है? शांति जीवन है, प्रेम जीवन है, आनंद जीवन है। अब उन चीजों को इंसान खोजता तो दूसरी दूसरी जगह है। कोई शराब पी के भी शांति को पाना चाहता होगा, कोई क्लब में जाकर के, लेकिन जो शांति है, सुख है, आनंद है, ये आत्मा की इंटरनल क्वालिटीज हैं, और ये केवल परमात्मा की याद से, मेडिटेशन से ही जीवन में प्राप्त होती हैं। तो इसलिए आत्मा को जानना इसलिए जरूरी है कि जो हमारा, हम फिजिकल हेल्थ पर तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन जो हमारी आत्मा का स्वास्थ्य है, जो हमारी इनर सोल का जो हेल्थ है, वो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, इन गुणों के साथ है। और इन गुणों की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं, इनको कैसे हम बढ़ा सकते हैं, उसके लिए मेडिटेशन की जरूरत है। तो हम आत्मा और शरीर के डिफरेंस को देख रहे थे, वो पांच तत्वों का पुतला, वो सात गुणों का पुंज है। उसके साथ साथ आत्मा विनाशी है, सॉरी शरीर विनाशी है, एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ये जो हमारा शरीर है, इसके अंदर जो कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, ये सब कर्मचारी हैं, और आत्मा राजा है। आत्मा राजा ही हमारी इन कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को अपने कंट्रोल से चलाता है। लेकिन उसके लिए राजा को अलर्ट होना, राजा को अपनी पहचान होना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि शरीर अलग और आत्मा अलग है। अब आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, जैसे हाथ पैर आंख नाक सब अंगों को मिला के कहते हैं शरीर, अकेले हाथ को शरीर नहीं कहते, सारे अंगों को मिलाकर कहते हैं शरीर। इसी तरह आत्मा के अंदर जो चेतना है, उसके अंदर तीन शक्तियां हैं। उसमें पहला है मन, दूसरा बुद्धि, और तीसरा है संस्कार। मन क्या चीज है? पॉइंट ऑफ लाइट। आत्मा में तीन शक्तियां हैं, इसको हम ध्यान से अंडरलाइन करेंगे। पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा की तीन चेतन शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन आत्मा की संकल्प शक्ति है, थॉट पावर है। सुबह से लेकर के शाम तक मन कभी खाली नहीं रहता है। हम सब काम से फारिग होके बैठ जाएं, लेकिन मन में कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा। बुद्धि आत्मा की निर्णय शक्ति है, डिसीजन पावर। कई बार मन में दो तरह के विचार उठते हैं, किस काम को करूं या ना करूं, जाऊं या ना जाऊं। यहां आने से पहले आपके मन में बहुत सारे विचार चले होंगे, पीछे की जिम्मेवारियां हैं, बच्चे हैं, जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं। फिर आपने उसके ऊपर डिसीजन लिया और फिर आप चल करके आए, कर्म किया। तो मन का काम है सोचना, विचार पैदा करना, बुद्धि का काम है उसके ऊपर निर्णय करना, और फिर जो भी हम कर्म करते हैं उसकी एक सूक्ष्म छाप हमारी आत्मा पे पड़ती है, उसको कहते हैं संस्कार। जैसी कंपनी में हम रहते हैं, जो कर्म हम बार बार करते हैं, उससे हमारे संस्कार, हमारी आदतें, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। हम अच्छे संग में रहेंगे तो अच्छी इंप्रेशन पड़ेगी और संस्कार अच्छे बनते जाएंगे। लेकिन संस्कार जो बन गए वो मन को प्रभावित करते हैं। जिसके जैसे संस्कार होते हैं ना, ज्यादा विचार वही चलते हैं। मान लो किसी के चोरी के संस्कार हैं, तो उसके मन में सारा दिन क्या चलेगा, कहां से चोरी करूं, कैसे करूं, है ना, कैसे चुराऊं। और जो उसकी बुद्धि फैसला करेगी वो संस्कारों से प्रभावित होके करेगी। एक महात्मा की बुद्धि करेगी चोरी करना ठीक नहीं है, एक चोर की बुद्धि फैसला करेगी चोरी करना ही ठीक है। बुद्धि तो दोनों में है, और ही जो गलत काम करते हैं उनके अंदर बहुत बुद्धि होती है, बड़ी प्लानिंग करते हैं, बड़े षड्यंत्र करते हैं, लेकिन वो बुद्धि दुर्बुद्धि होती है, डिवाइन बुद्धि नहीं होती। वो सुख नहीं दे सकती, वो चैन नहीं दे सकती। भले कुछ साधन सुविधाएं इकट्ठी कर लेंगे पर अल्टीमेटली सुख चैन नहीं पा सकते। तो जो मन और बुद्धि चलते हैं वो संस्कारों के अनुसार, और संस्कार किससे बनते हैं, जो मन बुद्धि करते हैं। तो एक दूसरे को ये सर्कल है। अब मान लो संस्कार किसी के बहुत बिगड़ गए, उनको ठीक करना है, तो कहां अटैक करें पहले, कहां करें, कहां करना चाहिए, जज साहब बताएं। सबसे पहले कहां करना चाहिए, मन, है ना, वो चीज फिर भी हमारे कंट्रोल में है। सबसे पहले हमें मन पे करना है, तो इसी को हम अच्छी तरह समझते हैं मन क्या चीज है। अक्सर करके हम मन के लिए क्या कह देते हैं कि ये मन जो है ना, ये तो एक घोड़े की तरह है, ये मन बड़ा चंचल है, ये तो सारा दिन टिकता नहीं है। और सचमुच चलता भी है तो इस मन के अंदर मुख्य रूप से चार तरह के विचार चलते हैं हर इंसान के मन में, सकारात्मक, नकारात्मक, व्यर्थ और साधारण, पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट और सिंपल थॉट्स। चार तरह के विचार हर व्यक्ति के मन में सारा दिन चलते हैं। अब जो ज्यादा विचार चलते हैं, ज्यादातर लोगों के, अपने अनुभव से बताना, वो कौन से चलते हैं, कौन से चलते हैं, नेगेटिव और व्यर्थ। कुछ कुछ नेगेटिव बता रहे हैं, कुछ व्यर्थ बता रहे हैं, और दोनों ही होते हैं सचमुच में। अगर बच्चा स्कूल से आने में लेट हो गया तो मां को पहला विचार कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा ना, है ना, कभी किडनैप ना हो गया हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो गया हो, है ना, बहुत सारी नेगेटिव। पॉजिटिव क्यों नहीं आया कि भाई उसके स्कूल में फंक्शन होगा, उसको हो सकता है प्राइज मिलता हो। पॉजिटिव नहीं आता है, हमें आदत पड़ गई है। ये आदत क्यों पड़ी ये हम आगे देखेंगे। हमें हर चीज के बारे में या तो नेगेटिव या तो वेस्ट। जो बात बीत गई 2 साल पहले 5 साल पहले उसके बारे में हम बार बार सोचते हैं, वेस्ट थिंकिंग। पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, थोड़ी आवाजें आ रही हो तो कान लगा के सुनते हैं, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं फिर भी सुनना चाहते हैं, वेस्ट। तो जो ज्यादा मनुष्य के मन में चलता है कभी पॉलिटिक्स के बारे में, बंगाल में क्या हो गया, कैसे होना चाहिए, क्यों हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, है ना, पूरे देश के अंदर, विश्व के अंदर, जैसे पूरी जिम्मेवारी हमारे ही सिर पे रखी हुई है, ये सब वेस्ट थिंकिंग है, वेस्ट। और जितना हम नेगेटिव और वेस्ट सोचते हैं उतना आत्मा की शक्ति रिड्यूस होती है, घटती जाती है, शक्ति क्षीण होती है। आत्मा भी तो एक एनर्जी है, एक पावर है, और दुनिया के अंदर जितनी भी चीजों का हम यूज करते हैं, आप एक मोबाइल को यूज करते हो, गाड़ी को यूज करते हो, उसकी बैटरी को चार्ज करना जरूरी है। रोज करते हो ना मोबाइल की चार्जिंग? आत्मा की चार्जिंग किस दिन की थी हमने? यूज तो कर रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, किसी दिन चार्जिंग की थी? उसकी चार्जिंग का तरीका केवल मेडिटेशन है, क्योंकि परमात्मा सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी है। किसी भी वो चार्ज करना होता है मोबाइल को, सोर्स के साथ उसको कनेक्ट करना पड़ता है, वो फिर से चार्जिंग हो जाती है। तो आत्मा की जो बैटरी है उसको चार्ज करने के लिए जो परम शक्ति है, ईश्वर है, परमात्मा है, उससे मन को कनेक्ट करना जरूरी है, लेकिन उसका सही तरीका आना चाहिए। तो सकारात्मक नकारात्मक, सकारात्मक से तो हमारी जो एनर्जी है वो बढ़ेगी, लेकिन जो पॉजिटिव सोच है वो मेडिटेशन और ज्ञान के द्वारा ही हो सकती है। और साधारण थॉट्स वो होते हैं जो हमारी दिनचर्या से, कारोबार से, है ना, उससे संबंधित होते हैं, वो तो हम सब करते ही हैं। तो मैक्सिमम जो विचार है, एक नॉर्मल माइंड एक मिनट के अंदर 25-30 विचार उठा लेता है, और जब हम टेंशन में होते हैं, जब नेगेटिव चलता है माइंड, तो ये विचारों की गति बढ़ जाती है, 40-45 हो जाती है। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ये नॉर्मल से भी घटकर बहुत कम, 5-10, 2-3 विचारों तक सीमित हो जाती है। और जितने विचार ज्यादा चलते हैं, जैसे मीटर तेजी से चलता है तो उतना क्या होता है, ज्यादा शक्ति खर्च होती है, गर्म हो जाता है मीटर। तो हम भी जब बहुत ज्यादा नेगेटिव, बहुत ज्यादा वेस्ट है, फिर क्या कहेंगे, सिर में दर्द हो गया, टेंशन है, आज मुझे बहुत टेंशन है। वो टेंशन किस चीज का नाम है? बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और वो भी नेगेटिव। तो इसलिए इन विचारों की गति को शांत करने का तरीका और पॉजिटिव में बदलने का तरीका मेडिटेशन है। तो इस प्रकार से मन बहुत बड़ी शक्ति है, उसको दोष नहीं देना है कि मन तो बड़ा चंचल है, घोड़ा है। सचमुच ही घोड़ा है, पर घोड़ा खराब थोड़ी ना होता है, घोड़ा कितनी अच्छी सवारी कराता है, रेस को जीतते हैं, घुड़दौड़। लेकिन उस घोड़े के ऊपर जो सवार है, अगर वो बेहोश होके बैठे, नशा करके बैठे, तो घोड़ा उसको जहां चाहेगा उड़ा के ले जाएगा। अगर सवार होश में है, लगाम अच्छी तरह पकड़ रखी है, तो घोड़ा उसे आनंद भी देता है। ये मन रूपी जो घोड़ा है, ये हमारा मिलन ईश्वर के साथ भी करा सकता है। और ये मन नेगेटिव सोच सोच के हमें डिप्रेशन में भी ले जा सकता है। दोष मन का नहीं है, वो तो एक शक्ति है, उसको सही दिशा देने की जरूरत है, घोड़े को ठीक दिशा देने की जरूरत है। इसलिए मन बहुत बड़ी शक्ति है, आज के बाद उसे दोषी मत ठहराना, लेकिन उस मन को बुद्धि रूपी लगाम से पकड़ के उसको ठीक डायरेक्शन में ले चलना है। और उसके साथ साथ हमारा जो विचार है, एक एक विचार जो हमारे मन में चलता है, वो कितना महत्वपूर्ण है, यहां हम देखेंगे कि मेरा विचार ही मेरा भाग्य है, माई थॉट इज माई डेस्टिनी। कैसे? जैसे मन के अंदर जैसा मनुष्य के विचार चलता है तो वैसी ही उसको फीलिंग आती है। अगर आपके मन में अच्छे अच्छे विचार चल रहे हैं, जैसे आप यहां आए कल से तो बहुत अच्छी बातें सुन रहे हो, अच्छा संग, अच्छा भोजन, अच्छा वातावरण, तो फीलिंग कैसी है आपकी? फीलिंग कैसी है? बहुत अच्छी, खुशनुमा है। घर में फोन करेंगे ना तो भी कहेंगे हम तो स्वर्ग में आ गए। घर वालों को चिंता हो जाती है कहीं असली स्वर्ग, असल में तो स्वर्ग में नहीं चले गए। तो इसलिए जो है फीलिंग बहुत अच्छी है, जैसा विचार वैसी फीलिंग, और फिर वैसा ही हमारा दृष्टिकोण, एटीट्यूड वैसा ही बनता है। अगर अच्छी फीलिंग आ रही है ना तो हमें हर चीज अच्छी नजर आएगी। जैसे वो शिष्य जो है वो एकदम से, क्योंकि अभी एटीट्यूड उसका नेगेटिव था तो उसको उस झोपड़ी गलती नजर आ रही थी, पर जो उसका गुरु था उसको बहुत अच्छा नजर आ रहा था, भगवान का शुक्रिया किया। अच्छा, वो बीच में रह गया था। शुक्रिया करने के बाद क्या हुआ कि जब रात को वो अपनी झोपड़ी में सोए तो शिष्य को तो सारी रात नींद नहीं आई, बेचारा करवटें बदलता रहा, लेकिन गुरु आराम से सोया। सुबह उठने के बाद गुरु ने भगवान का फिर शुक्रिया किया कि हे भगवान, आधे छप्पर वाली झोपड़ी में से आपके तारे भी देखे, चांद भी देखा, झोपड़ी में ही सोए सोए बहुत आनंद आया। लेकिन शिष्य ने फिर भगवान को गालियां देनी शुरू कर दी। तो ये है दृष्टिकोण, यही है एटीट्यूड, जैसे विचार वैसी फीलिंग और वैसा ही हमारा दृष्टिकोण। और फिर जैसा दृष्टिकोण होता है इंसान का वैसे उससे कर्म होते हैं, एक्शन उसके अंदर उसका वो प्रभाव दिखाई देता है। अब वो एक्शन गुरु जी के क्या थे? हाथ जोड़े, नमन किया, थैंक्स किया, और शिष्य ने भगवान को भी कोसता ही रहा। एक्शन, जैसा दृष्टिकोण वैसा एक्शन। और फिर वैसी ही हमारी आदतें डेवलप होती हैं, जो कर्म एक्शन हम बार बार करते हैं तो उससे क्या बनती है हमारी, जो कर्म बार बार करते हैं उससे हमारी आदतें कहो या संस्कार कहो वो बनते हैं। और जो हमारी आदत पक्की हो गई वही इंसान का व्यक्तित्व होता है, वही उसकी पर्सनैलिटी होती है। कोई बड़ी पॉजिटिव पर्सनैलिटी का होगा, कोई नेगेटिव पर्सनैलिटी का होगा, उसी से हमारी पर्सनैलिटी बनती है। और जैसी इंसान की पर्सनैलिटी है वही उसकी डेस्टिनी है, वही भाग्य है। तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ लो जरा, थॉट्स जैसे होंगे वैसा ही हमारा भाग्य बनेगा। तो इसलिए हमें अपने विचारों पर बहुत ध्यान देना है और उसी से हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। एक और बहुत जरूरी चीज है कि विचार चलने के कारण क्या होते हैं, विचार क्यों चलते हैं, कैसे चलते हैं। कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो डॉक्टर कहेगा कि ये दवाई लो लेकिन चिंता मत करना। अब पेशेंट को ये नहीं पता कि चिंता छूटे कैसे, और खुद डॉक्टर को भी नहीं पता क्योंकि वो भी सारा दिन चिंता में ही रहता है। तो इसलिए विचार चलने की जो रूट है, रूट कोज है, क्यों इंसान के अंदर विचार चलते हैं। हर व्यक्ति के विचार अलग अलग होते हैं, सबकी विचारों की क्वालिटी अलग अलग है। ये विचार क्यों चलते हैं, सबसे पहला कारण होता है इन्फॉर्मेशन, जो हमें सूचनाएं मिलती हैं, जो समाचार मिलते हैं। और वो कैसे मिलते हैं? सवेरे सवेरे उठते ही, उठते ही पहले तो न्यूज़पेपर, आजकल उसका रिवाज थोड़ा कम हो गया, उठते ही मोबाइल, उठते ही टीवी ऑन, आज की नई खबर। और जो खबर होती है वो क्या होती है आजकल, न्यूज क्या होती है, गुड या बैड? जो बहुत ज्यादा ऐसी न्यूज होंगी ना, हिंसा की, अपहरण की, हैं, तो वो मोटी मोटी हेडलाइन में आपके मोबाइल में भी आएगी और न्यूज़पेपर में भी आएगी। वो इन्फॉर्मेशन अंदर गई, इतने लोग मर गए, बस डूब गई, किडनैप, बच्चों को किडनैप कर लिया, ये हो गया, बहुत सारी पॉजिटिव तो बहुत थोड़ी होंगी, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर गई, फीड कर लिया सवेरे सवेरे। और इसीलिए तो माँ को विचार आया था, बच्चा जब लेट आया तो कभी किडनैप ना हो गया। किडनैप कहां से आ गया? फीड कर रखा है। तो एक विचार चलते हैं जो दिन भर में इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर आती है, दूसरा चलते हैं पास्ट एक्सपीरियंस, भूतकाल की बहुत सारी बातें हम अपने चित्त में रखते हैं और उसके कारण विचार चलते हैं। किसी के घर में गए थे 5 साल पहले, शादी थी, चलो थोड़ा सा उन्होंने पूछा नहीं, बैठने के लिए नहीं कहा, अब वो बात चल रही है, वो बीत चुकी इतना टाइम पहले, अब उसने हो सकता है चेंज भी कर लिया हो, जैसे ही वो व्यक्ति दिखाई देगा, अच्छा ये वही है। ये है पास्ट एक्सपीरियंस और जो हमारे विचार चलवाते हैं। और तीसरी चीज होती है बिलीफ सिस्टम, हमारे जीवन में कुछ मान्यताएं हैं जिनको साथ बांध करके हम चलते हैं, और कई बार वो भी हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो हमारे वेस्ट थिंकिंग है, उसका बहुत बड़ा कारण बनते हैं। तो इन तीन कारणों से हमारी ज्यादातर विचार चलते हैं। यहाँ इसी सूर्य विश्वविद्यालय में इसलिए सिखाया जाता है कि सुबह उठने के बाद का 1 घंटा और रात को सोने से पहले का 1 घंटा ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस लास्ट घंटे के अंदर हम जो कुछ सोचते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो हमारे चित्त में बैठ जाता है और रात भर भी सब कॉन्शियस माइंड में वही चलता रहता है। इसीलिए आजकल लोगों को नींद की बहुत बड़ी समस्या है, नींद नहीं आती, क्योंकि जो लास्ट के जो संकल्प थे वो चित्त में, वो जो टॉक्सिक चीजें थी वो बैठ गई और रात भर वो दिमाग के अंदर चलती हैं। इसलिए अंतिम जो घंटा है उसके अंदर हम कुछ अच्छा पढ़ें, कुछ अच्छा चिंतन करें, मेडिटेशन करके सोएं 10-15 मिनट भी, और सुबह उठने के बाद 1 घंटा, उस समय सुबह उठने के बाद 10 मिनट जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो बहुत एक्टिव होता है, उस समय जो कुछ हम देखें, पढ़ें, सुनेंगे वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उस समय नो न्यूज़पेपर, नो फोन, है ना, वो नहीं, लेकिन सुबह उठने के बाद भी हम 10-15 मिनट अच्छा चिंतन करें, मेडिटेशन करें, तो हमारा सारा दिन बहुत अच्छा बीतेगा। तो मन को ठीक करने के लिए हमें अपनी इस विचार शक्ति को ठीक करना है, और क्योंकि सबसे जरूरी चीज आत्मा के अंदर है मन, इसलिए मन को हमें अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है। मन को हम शक्तिशाली कैसे बनाएं? मेडिटेशन तो करेंगे ही, वो तो मुख्य चीज है ही, लेकिन उसके साथ साथ भी हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। तो वो चीजें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है कि जीवन में हमेशा ट्रस्टी भाव रखो, बी ट्रस्टी। मैं घर का मालिक नहीं हूं, ये भगवान का घर है, उसके बच्चे हैं, मैं इनको संभाल करने वाला हूं। जैसे कोई ट्रस्टी होता है ना किसी मंदिर का, किसी धर्मशाला का, गुरुद्वारे का, उसका मैंपन नहीं होता है, जहां मैंपन आता है वहां दुविधाएं पैदा होती हैं। जहां हम भगवान की अमानत समझते हैं, जिसको गीता में कहा अनासक्त भाव, योगी मना अनासक्त, आसक्ति नहीं हो, मेरा मेरा नहीं। जैसे एक नर्स है, सबकी सेवा करती है ट्रस्टी भाव से, लेकिन जब कोई पेशेंट ठीक होकर के जाता है तो वो रोने नहीं लग जाती। तो हम, ये शरीर भी भगवान की दी हुई अमानत है, घर संपत्ति बच्चे सब कुछ उसकी अमानत है, मैं केवल उसे संभाल रहा हूं, मैं केवल प्रतिनिधि हूं। लेकिन आज उसकी बजाय इंसान क्या समझता है, मैं निधिपति हूं, मैं ही मालिक हूं। और वो मालिकपन उसके अंदर कभी क्रोध जगा देगा, मैं मालिक हूं तो मेरी बात क्यों नहीं मानी, बच्चों ने क्यों नहीं मानी, पत्नी ने क्यों नहीं मानी, ईगो। तो सबसे पहले है ट्रस्टी भाव। वैसे भी देखो, हम देख भी रहे हैं और ये गीता का सार भी सुनते हैं कि हम जब इस दुनिया में आए थे तो कुछ भी लेकर नहीं आए थे, खाली हाथ आए थे कि नहीं, एक चोगा जो है ना वो भी पहनाया गया था बाद में, एक वस्त्र भी लेके नहीं आए थे। और जिस दिन जाएंगे उस दिन केवल एक कफन का सफेद चादर होगी और कुछ नहीं, कफन में जेब भी नहीं होगी, और जेब हो तो उसमें कुछ छोड़ेगा नहीं कोई। तो इसलिए खाली आए थे और खाली ही इस जीवन की पूरी यात्रा के अंदर, कुछ भी मेरा नहीं है। कितना भी बड़ा बैंक बैलेंस होगा, कितनी जमीन जायदाद संपत्ति, बड़ी कोठी, सब कुछ होगा, पर जिस दिन जाएंगे एक सुई भी लेके नहीं जा सकते। ये भगवान ने एक बड़ी सुंदर व्यवस्था बना रखी है, जाओगे एग्जिट करोगे एक सुई भी नहीं ले जा सकते। फिर हम जीवन भर क्यों इतना अंधकार में रहते हैं, मेरा मेरा में रहते हैं, जो हमें दुख देता है। तो इसलिए श्रेष्ठ कर्म केवल हमारे साथ जाएंगे, वो पूंजी हमें अवश्य जमा करनी है, दुआओं का धन। दूसरा, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए कम सोचो और अच्छा सोचो। इंसान इसके अपोजिट करता है, ज्यादा सोचता है और नेगेटिव सोचता है किसी भी चीज के बारे में। तो इसलिए कम से कम सोचें। एक और चीज का हम ध्यान रखें, अगर हमें मन को शक्तिशाली बनाना है, अवॉइड होल्डिंग नेचर, ये जो पकड़ की आदत है ना, ये मेरा है, ये मेरा है, पकड़ना। किसी भी चीज को जब हम लंबे समय तक पकड़ के रखते हैं तो वो बोझिल कर देती है। ये एक बहुत छोटा सा इंस्ट्रूमेंट, केवल 20 ग्राम का होगा मुश्किल से, मुझे इसको उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं 24 घंटे इसको पकड़ के रखूं तो, और एक सप्ताह तक पकड़ के रखूं, परेशानी होगी या नहीं? बहुत सारी बातें हमने चित्त में पकड़ रखी हैं, पकड़ रखी है लोगों की। किसी ने मान लो दो शब्द आपको अपमान के बोल दिए, दो शब्द, और एक मिनट खराब किया, एक मिनट से भी कम टाइम, 30 सेकेंड ही लगे होंगे, और उस समय आपको दुख हुआ, थोड़ी चोट लगी मन को, लेकिन 6 साल तक हमने वो दो शब्द पकड़ रखे हैं और उसको कई बार मन में दोहराया है। जितना दर्द उस समय हुआ था उतना ही दर्द सैकड़ों बार, हजारों बार हुआ। तो वो व्यक्ति ज्यादा दोषी है या मैं खुद? कौन? उसको बार बार तो मैंने ही सोचा है ना, और मैंने ही, जैसे कोई छोटा सा चोट लग जाए, वो चोट ठीक हो जाती है थोड़े टाइम में, पर उस घाव को कुरेदते रहो तो नासूर बन जाएगा। इसलिए चित्त में जो भी किसी की बात पकड़ रखी हो ना, छोड़ दो, ज्ञान सरोवर में छोड़ कर जाना। और छोड़ने का तरीका यहां भगवान हमें सिखाते हैं, क्षमा करो और भूल जाओ, फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगिव कर दो उनको, और दिल से फॉरगिव करना है। कई बार हम ये तो कह देते हैं, अच्छा चलो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुमने तो इतना किया, पर मैं तो फिर भी माफ करता हूं। ये माफ करना नहीं है, क्योंकि ये याद है तुमने क्या किया और मैं क्या कर रहा हूं, दोनों चीजें याद है, ये माफी नहीं है। तो माफ करना माना बिल्कुल मन से दुर्भावना खत्म हो जाए, और उसके लिए भी एक अच्छा विचार करें कि हे ईश्वर इस आत्मा को भी सद्बुद्धि देना। तो फिर उससे जो पकड़ी हुई बातें हैं ना वो छूटेंगी, और वो छूटेंगी तो जीवन में चैन मिलेगा। तो क्या करना है, छोड़ सकते हैं? जो कहते हैं हमने किसी की भी बात पकड़ रखी थी, आज हम जरूर उसको क्षमा करते हैं, तो आप देखना मन बहुत हल्का हो जाएगा। और एक तरीका है ABCD फार्मूला, ये भी मन को शक्तिशाली बनाने के लिए है। ए जो है वो कुछ चीजों को हम अवॉइड करें। कितनी सारी बातें ऐसी होती हैं जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उसके ऊपर बार बार ध्यान देंगे, है ना। छोटी मोटी कुछ भी बात हो गई, ऑफिस में हो गई, घर में हो गई, पत्नी के साथ, अवॉइड। बी फॉर बाईपास, कुछ चीजों को हम जीवन में बाईपास करके चले। ज्यादा ट्रैफिक होता है ना तो बाईपास रोड निकाल देते हैं, भाई बीच में उसके जो है ना, भीड़ के बीच में ना घुसो। तो इसलिए बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे हमारा कोई ज्यादा मतलब नहीं होता, पर फिर भी हम बीच में जाके टांग अड़ा देंगे। तो इसलिए कुछ चीजों को जीवन में बाईपास करो, लेट गो। और सी फॉर कैंसल, कुछ चीजों को हमें जीवन में बिल्कुल कैंसल करना है। नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचना है। कुछ जीवन में व्यसन है, बुराइयां हैं, नशे हैं, जो जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, उनको हमें बिल्कुल कैंसिल करना है। और वो शक्ति मेडिटेशन से अपने आप आ जाएगी। और डी फॉर डू, जो चीजें जरूरी हैं उनको हम करने का पक्का संकल्प करें। हमने रोज आधा घंटा अपनी आत्मिक उन्नति के लिए मेडिटेशन सीखना और करना है, रोज एक रूटीन बना ले। 10 मिनट रात को सोने से पहले, 10 मिनट उठने के बाद, करना ही है। तो जो जीवन में जरूरी है, आवश्यक है, उसे अवश्य करें। और सदा प्रसन्न रहें। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, कितना हर्षित रहता है, अपने पराए का कोई भेदभाव नहीं होता। तो ऐसे हम ईश्वर के बच्चे हैं, अपने मन को, अपनी नेचर को बच्चे जैसा सरल बना लें, इजी नेचर। एक होते हैं प्रॉब्लम नेचर और एक होते हैं इजी नेचर, सरल स्वभाव। प्रॉब्लम नेचर हर बात में क्यों करता है। दूध गर्म मिला तो कहेगा गर्म क्यों, ठंडा मिला तो ठंडा क्यों, है ना। लेकिन जो इजी नेचर होगा ना, वो कहेगा कोई बात नहीं, जो है सो अच्छा है। देखो सारा जो घर का वातावरण है वो बदल जाएगा। तो इसलिए हमें सदा प्रसन्न चित रहना है। तो ये हम किसको डिस्कस कर रहे थे अब तक, आत्मा के अंदर जो तीन शक्तियां हैं, उसमें जो मन है वो कितना महत्वपूर्ण है, और उस मन को हम शक्तिशाली कैसे बनाएं, है ना। उसके लिए जो भी पॉइंट्स मिले थोड़ा नोट भी करेंगे और फिर उसको चिंतन में लाएंगे तो बहुत फायदा होगा। फिर आत्मा की दूसरी शक्ति कौन सी थी? बुद्धि। बुद्धि हमारी जो निर्णय शक्ति है, डिसीजन पावर है। जितना जितना हम मेडिटेशन करेंगे उतना उतना हमारी जो बुद्धि है वो रिफाइन होती जाएगी, दिव्य बुद्धि बनती जाएगी, अंतरात्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी, अंतर विवेक बढ़ता जाएगा। विवेक जो हमारी जजमेंट होती है ना, उसके अंदर भी देखो अंतरात्मा की आवाज को सुन के फैसला करना वो बहुत जरूरी है। ये ठीक है कि वो तथ्य भी होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक ह्यूमैनिटी, एक अंतरात्मा की आवाज है ना कि सही क्या है गलत क्या है, वो विवेक हमारा जागृत होता है। दिव्य बुद्धि हमारी बनती है मेडिटेशन के द्वारा। और फिर आत्मा की तीसरी चीज कौन सी थी? संस्कार। तो ये जो संस्कार होते हैं ये मुख्य रूप से पांच तरह के होते हैं। जो संस्कार होते हैं ना, एक तो कर्मों से बनते हैं, लेकिन उसके अलावा भी जब आत्मा आती है जिस घर में, तो कुछ जन्म वो पास्ट पूर्व जन्म से लेकर के आती है। पूर्व जन्म के जो संस्कार है ना, जब आत्मा वस्त्र छोड़ती है, दूसरा वस्त्र धारण करती है, तो जो संस्कार उसके अंदर है उसको कैरी फॉरवर्ड करती है अगले जन्म में। इसीलिए हम देखते हैं कि एक ही घर के अंदर एक ही माता पिता के जो बच्चे हैं उनके अंदर बहुत फर्क होता है उनकी आदतों में। एक बच्चा बड़ा शांत स्वभाव होगा, एक बड़ा चंचल होगा, एक पढ़ाई में बड़ा कुशाग्र बुद्धि होगा, दूसरा डल होगा, जबकि उनको एक ही एनवायरमेंट मिल रहा है। ये अंतर क्यों है? क्योंकि आत्मा पूर्व जन्म से भी संस्कार साथ में लाई है। दूसरा, माता पिता के संस्कार, हेरिडिटी का इफेक्ट, वंश का प्रभाव, वो भी संस्कारों में रहता है। और तीसरा, जो संस्कार मिलते हैं वो कंपनी से मिलते हैं, संग। मान लो किसी बच्चे के संस्कार बहुत अच्छे थे लेकिन वो किसी गलत संग में पड़ गया तो संस्कार बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। संस्कार अच्छे नहीं थे लेकिन उसे अच्छी कंपनी में रखा गया तो संस्कार सुधरने भी शुरू हो जाते हैं। तो पहला पूर्व जन्म से, दूसरा माता पिता से संस्कार मिलते हैं वंश से, तीसरा कंपनी से मिलते हैं, चौथा जो संस्कार है वो विल पावर से मिलते हैं। मान लो संस्कार नॉर्मल हैं, पर कई बार बड़ी विल पावर स्ट्रांग होती है कि मुझे ये काम करना ही है, तो स्ट्रांग विल पावर भी हमारे संस्कारों को बदलती है। कई बार कोई अपाहिज होते हैं ऐसे और ये संकल्प कर लेते हैं मुझे तो हिमालय की चोटी पे चढ़ना ही है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं। महात्मा गांधी जी ने संकल्प किया सत्य और अहिंसा के बल पर देश को आजाद कराना ही है और कराया। स्ट्रांग विल पावर, तो वो भी हमारे संस्कार चेंज करती है। और पांचवें होते हैं ओरिजिनल संस्कार। जब आत्मा उस ईश्वर के घर से आई थी तो हमारे असली संस्कार क्या थे? असली संस्कार वो सात गुण हैं जो हमने आत्मा के देखे ना, इसेंस और सेवन वैल्यूज। जो असली संस्कार, ओरिजिनल जो आत्मा की नेचर है, वो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति है। जन्म मरण के चक्कर में आते आते थोड़ा थोड़ा ये संस्कार हमारे धूमिल हो जाते हैं, शांति की बजाय अशांत हो गए, सुख स्वरूप की बजाय दुख स्वरूप हो गए। अब मेडिटेशन वो विधि है जिससे हम धीरे धीरे अपने ओरिजिनल संस्कारों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आत्मा मन बुद्धि संस्कारों सहित है। जो शुरू में हमने देखा था ना कि शरीर के अंदर चेतना बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, उसके अंदर तीन शक्तियां मन बुद्धि संस्कार, जिनका आत्मा का मस्तक में रहने का स्थान भ्रकुटी में है। ये शरीर केवल मात्र एक गाड़ी है और आत्मा इसका ड्राइवर है। जो आंखों से देखती है, कानों से सुनती है, मुख से बोलती है। लेकिन आत्मा का ओरिजिनल स्थान कौन सा है? जैसे देखो, ड्राइवर गाड़ी में उतनी ही देर बैठेगा जब तक उसको चलाना है, फिर उसका घर अलग होता है जहां पे जाके वो विश्राम करता है। तो हम सबका घर, असली घर कौन सा है? तो ये तीन लोक का चित्र दिखाया है, जिसमें नीचे ये साकार जगत है, ये पांच तत्व हैं, नीला आकाश है, नक्षत्र हैं, इसको मृत्यु लोक भी कह देते हैं। इसमें हम सब आत्माएं ये शरीर रूपी वस्त्र धारण करती हैं, जन्म और मरण के चक्कर में आती हैं। इससे ऊपर सूक्ष्म देव लोक है, और उससे भी पार जो तीसरा लोक है, जिसे परम धाम, शांति धाम या मुक्ति धाम कहते हैं, यही हम सबके रहने का असली ठिकाना है। तो हम सब उस परम धाम से नीचे उतरे हैं, और जब ऊपर से नीचे आए थे तो हमारे ओरिजिनल संस्कार थे, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता। अब हमें फिर से अपने उन्हीं संस्कारों को प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले आत्मचिंतन करना है, खुद को पहचानना है, अपनी रियल आइडेंटिटी में हमें फिर से स्थित होना है। क्योंकि मेडिटेशन का ये फर्स्ट स्टेप है आत्मचिंतन, सेल्फ रियलाइजेशन। पहले खुद को जानेंगे, अपने स्वरूप में स्थित होंगे, फिर उस पिता परमात्मा को पहचानेंगे, वो सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, और फिर मन को उसके साथ कनेक्ट करेंगे तो जो कुछ उसके अंदर है वो धीरे धीरे मेरी आत्मा के अंदर भी भरना शुरू हो जाएगा। और परमात्मा इन सात गुणों के सागर हैं। वैसे तो उसके अनंत गुण हैं, लेकिन उसको अगर हम सात में समा लें तो परमात्मा शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं। जब मन को आत्मा के अंदर, मन और मन के अंदर विचार शक्ति, विचारों के द्वारा अपना कनेक्शन उस परम पवित्र ईश्वर के साथ जोड़ेंगे, तो जो कुछ उसके अंदर है वो मेरे अंदर आना शुरू हो जाएगा, वो शांति भरनी शुरू हो जाएगी, फिर से वो शुद्ध प्रेम, वो सच्चा सुख जो हमें भौतिक चीजों में नहीं मिल सकता लेकिन परमात्मा की याद में मिल सकता है। इसलिए आत्मचिंतन करें, फिर मन को उसके साथ जोड़ेंगे तो वो सब गुण शक्ति बढ़ती जाएंगी, और धीरे धीरे आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में, अपने शांति के स्वरूप में, प्रेम के स्वरूप में, आनंद के स्वरूप में स्थित हो जाएगी। जब हम अंदर से भरते हैं सुख, शांति, प्रेम परमात्मा की याद से, तो जो बाहर की भटकन है वो बंद हो जाती है। देखो, हर इंसान शांति को, आनंद को, प्रेम को भी कहां खोजता है? सुबह उठते ही घर के अंदर भी कहेंगे, बहू ने सुबह उठते ही मुझे नमस्ते नहीं की, मेरे से प्यार से बात नहीं की। सास भी वही कहेगी, बहू भी वही कहेगी, प्रेम के भिखारी हैं हम सब, है ना? तो ये प्रेम से आत्मा खाली है बिचारी, खुद के पास ही नहीं है तो कैसे देंगे? तो प्रेम का जो स्रोत है वो एक परमात्मा है। जब उससे प्रेम भर लेंगे तो हम प्रेम बांटना शुरू कर देंगे, मांगेंगे नहीं। और जब बांटना शुरू करेंगे, आप किसी से प्यार से बात करेंगे, प्रेम का व्यवहार करेंगे, तो वो भी आपको देना शुरू कर देंगे। तो इसलिए सुख, शांति, आनंद, प्रेम वो हमें अंदर से भरना है। तो बाहर की सारी भटकन, तृष्णाएं, अशांति सब खत्म होती जाएगी। तो आज के इस फर्स्ट लेसन पे हम अच्छी तरह से चिंतन करेंगे, और उसके लिए एक बहुत सुंदर पॉजिटिव थॉट आत्म चिंतन के लिए यहां लिखा हुआ है। क्या चिंतन करना है हमें? मैं प्रकाश पुंज, आत्मा का स्वरूप कैसा है? वो एक पॉइंट ऑफ लाइट है, लाइट, डिवाइन लाइट है। मैं प्रकाश पुंज, शक्ति पुंज आत्मा, खुशियों के सागर भगवान की संतान हूँ, खुशियों के खजाने का मैं मालिक हूँ, क्योंकि भगवान कौन है, मेरा पिता है ना, तू मात पिता हम बालक तेरे। तो जो बाप का होता है वो सब कुछ बच्चे का होता है, तो मैं खुशियों के खजाने का मालिक हूँ और मुझे सदा खुश रहना है। ये संकल्प करो, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। बार बार ये नहीं सोचना मैं तो बहुत दुखी हूं, मैं तो बहुत परेशान हूं, नहीं, मैं तो खुशियों के सागर की संतान हूं, मैं बहुत खुश हूं, मुझे सदा खुश रहना है। और कब तक खुश रहना है? 3 दिन ज्ञान सरोवर में है तब तक। कब तक खुश रहना है? मुझे जब तक जीना है सदा खुश रहना है। और मैं खुश रह सकता हूं क्योंकि मैं खुशियों के सागर की संतान हूं। तो हम ये आत्मचिंतन करेंगे बहुत अच्छी तरह से। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति दोनों आंखों से देख रही हूं, यहां से उठ करके जाएं तो भी अपनी गाड़ी को ड्राइवर चला रहा है मस्तक में बैठ के, हैं, भोजन करें तो भी इस गाड़ी को पेट्रोल दे रहे हैं। माना हर कर्म में वो आत्म चिंतन हमारा चलता रहे, ठीक है। तो अब से लेकर के सारा दिन इस आत्म स्मृति में ही बैठ के सुनना है, आत्म स्मृति में ही भोजन करना है, आत्म स्मृति में ही हर कर्म करना है। तो अभी हम केवल 2-3 मिनट के लिए ये आत्म चिंतन करेंगे, आत्म रियलाइजेशन करेंगे। ओम शांति। कुछ क्षण के लिए सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है, मस्तक में मैं ज्योत हूं, प्रकाश पुंज हूं, उसे देखते हुए अपने मस्तक पर भी इस लाइट को फील करना है। मैं इस पंच भौतिक मिट्टी के शरीर में मस्तक के मध्य में एक जागती ज्योत हूं, चेतन शक्ति हूं, प्रकाश पुंज हूं, एक दिव्य सितारा आत्मा हूं। मैं ज्योति पुंज आत्मा अपने असली रूप में बिल्कुल शांत हूं, शुद्ध हूं, पवित्र हूं। मैं ज्योति पुंज आत्मा परम शक्ति ईश्वर की संतान हूं। महसूस करें मस्तक के मध्य में सूक्ष्म सितारा आत्मा। मुझ आत्मा सितारे से दिव्य प्रकाश की किरणें निकल निकल कर चारों ओर फैल रही हैं। मैं चेतन शक्ति मन बुद्धि संस्कारों सहित हूं। इस शरीर की कर्म इंद्रियों का राजा हूं। महसूस करें मस्तक के मध्य में सूक्ष्म चेतना शक्ति। मैं आत्मा सबके लिए सदा शुभ भावना, शुभ कामना रखते हुए सबको क्षमा करती हूं। मन की आंखों के सामने उन सबको लाएं जिन्होंने जीवन में कभी दुख दिया, कष्ट पहुंचाया। आज ये संकल्प कर लें कि मैं सबको क्षमा करता हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा क्षमा क्षमा। सब सुखी हों, सबका भला हो। मैं चेतन शक्ति आत्मा दिन भर में कर्म करते हुए सबके साथ शांति का व्यवहार करूंगी, सबको सुख बांटती रहूंगी। ओम शांति शांति शांति।